ईरानी संस्कृति और कला।
श्रोताओ, साप्ताहिक कार्यक्रम श्रृंखला ईरानी संस्कृति और कला की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और हसन अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। कार्यक्रम में ईरान की वास्तुकला की विशेषताओं पर चर्चा जारी रखेंगे।
श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम में हमने ईरान की वास्तुकला की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए ये कहा था कि ईरान में भवन निर्माण के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था वे सामान्यतः देश के भीतर ही पाई जाती थीं। ये चीज़ें ईरान की जलवायु के अनुरूप हुआ करती थीं। ईरान की वास्तुकला में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जिनकी तुलना यदि अन्य देशों की वास्तुकलाओं से की जाए तो हमें उनकी विशेषताओं का पता चलेगा। इन विशेषताओं में उचित डिज़ाइनिंग, अच्छी संरचना और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के साथ ही उसकी सादगी का उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रकार की विशेषताएं ईरान की वास्तुकला को प्रदर्शित करती हैं। इन सारी बातों के साथ ही ईरान की वास्तुकला आदिकाल से ही प्रकृति से प्रभावित रही है।
सृष्टि की रचना और उसमें पाई जाने वाली प्रकृति आरंभ से ही वास्तुकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। मनुष्य ने जब से घर बनाकर रहना सीखा है उस समय से उसकी वास्तुकला प्रकृति से प्रभावित रही है। प्रकृति ने मनुष्य को वास्तुकला के क्षेत्र में रचनात्मकता प्रदान की है, अर्थात ईश्वर की रचना को देखते हुए वास्तुकारों ने नए नए विचार प्राप्त किए हैं। प्रकृति हमेशा और हर जगह मौजूद है, जो सदैव ही वास्तुकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। दूसरी ओर मानव समाज सदैव प्रगति की ओर अग्रसर रहा है और उसकी इस प्रगति में भी प्रकृति के प्रभाव को स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है।
घरों के बनाने में प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग आदिकाल से होता आया है। आरंभिक काल में मनुष्य ने मिट्टी, पानी तथा पत्थर के संयोग से इमारतें बनाई थीं जो साधारण सी होती थीं। अति प्राचीन काल से मनुष्य प्रकृति में पाई जाने वाली चीज़ों को सम्मान देता आया है, जैसे पानी, आग, पेड़, पहाड़, नदी, सूरज और चांद इत्यादि। पुरानी आस्था से अलग हटकर देखा जाए तो प्रकृति में पाई जाने वाली बहुत सी वस्तुओं का वास्तुकला में प्रयोग किया जाता रहा है। ईरान की वास्तुकला में भी इनको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
ईरान की भवन निर्माण शैली विगत से संस्कृति, परंपराओं और भौगोलिक स्थिति के अनुकूल रही है, जिसमें धार्मिक आस्था की भी छाप दिखाई देती है। पुराने जमाने में ईरान के शिल्पकारों का प्रयास घर के भीतरी भाग को सुसज्जित करने में रहता था। वे लोग घर के बाहरी रूप को कोई विशेष महत्व नहीं दिया करते थे। उस जमाने में घर के भीतरी भाग को इसलिए अधिक सुसज्जित किया जाता था क्योंकि घर वालों का अधिकतर काम इसके भीतरी भाग से ही होता था, न कि बाहरी भाग से।
ईरान की भौगोलिक स्थिति कुछ क्षेत्रों में संतुलित और मेडिटेरेनियन जैसी है। ये विषय सदैव ही पारंपरिक वास्तुकारों के ध्यान का केंद्र रहा है। घरों को बनाने वाले भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ही घरों का निर्माण किया करते थे। इस बारे में एक ईरानी शोधकर्ता मोहम्मद हसन अब्रीशमी लिखते हैं कि काशान, नतंज, काश्मर और शाहरुज जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में बने घर वहां की जलवायु या भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाए गए हैं। इन घरों की दीवारें ऊंची होती हैं जिन पर सरदाब बनाया जाता था। जिन घरों में सरदाब बनाए जाते थे वे जाड़ों में गर्म और गर्मी में ठंडे रहते थे। इनकी छतों और दीवारों पर कच्ची मिट्टी तथा भूसे का लेप हुआ करता था। ईरान के वास्तुकार घरों के निर्माण में सूर्य की परिक्रमा और उसकी धूप को भी दृष्टिगत रखा करते थे। यही कारण है कि उनके द्वारा बनाए गए घरों में सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में विपरीत वातावरण पाया जाता था। प्राचीन काल में ईरान में खाने के बर्तन भी क्षेत्रीय भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत ही बनाए जाते थे।
ईरान की भवन निर्माण शैली की एक विशेषता उसमें लकड़ी का प्रयोग है। इस प्रकार के घर सामान्यतः उत्तरी ईरान में बनाए जाते हैं, जैसे गिलान और मजंदरान। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि कैस्पियन सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में बने घरों में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। इन क्षेत्रों में बने घरों में लकड़ी का प्रयोग खिड़कियों को, स्तंभों को, शाहतीरों और छतों में किया जाता है। घर के ढांचे में लकड़ी के प्रयोग के अतिरिक्त घरों के आंतरिक डेकोरेशन में भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में प्रचलित पारंपरिक इमारतों को गालीपोश कहा जाता है। गाली वास्तव में एक प्रकार की वनस्पति है जो तालाबों के किनारे उगती है।
इन क्षेत्रों में जो घर बनाए जाते हैं वे सामान्यतः दो मंजिला होते हैं। केंद्रीय ईरान के क्षेत्रों के विपरीत, जहाँ के घरों में आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, उत्तरी क्षेत्रों में कमरे एक दूसरे के ऊपर बनाए जाते थे। उत्तरी ईरान में धान के खेतों के किनारे घने जंगल घरों में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी का प्रमुख स्रोत होते हैं। यहाँ पर अधिक वर्षा के दृष्टिगत छतों को कई परतों वाला और ढलुआ बनाया जाता है। उत्तरी ईरान के कुछ क्षेत्रों में घर में प्रयोग की गई लकड़ियों पर मिट्टी की लिपाई की जाती है।
जिसने भी ईरान के केंद्रीय, उत्तरी और पूर्वोत्तरी क्षेत्रों को देखा होगा, उनको ईरान के दक्षिणी क्षेत्रों में बने हुए घरों के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। ईरान के पारंपरिक वास्तुकारों ने देश के दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत ही रोचक काम किए हैं। उन्होंने ऐसी इमारतों का निर्माण किया है जो भीषण गर्मी और बाढ़ में भी सुरक्षित रहते हैं। इनमें पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता है।
दक्षिणी ईरान में घरों की दीवारों पर अधिकतर पत्थर लगे होते हैं, जिन पर चूनाकारी की जाती है। दीवारें लगभग 5 मीटर ऊंची होती हैं। इन घरों में चूने की बनी जालीदार खिड़कियां होती हैं। जालीदार खिड़कियों का एक उद्देश्य इमारत के भीतरी हिस्से को ठंडा रखना होता है। इस क्षेत्र में घरों के दरवाजे जिस लकड़ी से बने होते हैं वे सीरसम या कहूर नामक पेड़ की लकड़ी के होते हैं। ये लकड़ी ठंड और गर्मी दोनों मौसमों में, सर्दी और गर्मी के मुकाबले में बहुत मजबूत होती है। यहाँ पर घरों के दरवाजों पर इतने सुंदर बेल बूटे बनाए जाते हैं जिन्हें देखकर मनुष्य को आनंद मिलता है। इस क्षेत्र में मस्जिदों, बाजारों या सार्वजनिक स्थलों की छतों पर बांस से बनी चटाई पड़ी होती है, जिससे इमारत के भीतर प्रकाश आता रहता है। इसको सामान्यतः लाल, काले और पीले रंग से रंगा जाता है, जो देखने में अच्छी लगती है।
अति प्राचीन इमारतों की खुदाई या इस्लामिक काल में बनी इमारतों के खंडहरों पर किए गए शोध से पता चलता है कि उस काल में ईरान की पारंपरिक वास्तुकला में शीशे का भी प्रयोग किया जाता था। इन शीशों का इस्तेमाल प्रकाश के लिए किया जाता था, इसलिए इन्हें खिड़कियों और दरवाजों में लगाया जाता था। ईरान के चोगान जंबिल में की गई खुदाई के दौरान 1000 वर्ष ईसा पूर्व से संबंधित कुछ खिड़कियाँ मिली हैं, जिनमें गोलाकार और अन्य आकार के शीशे लगे हुए थे। शीशे लगी ये प्राचीन खिड़की इस समय ईरान के राष्ट्रीय संग्रहालय में मौजूद है।
हखामनिशी काल की इमारतों में जगह जगह पर शीशों का प्रयोग किया गया है। बाद में ईरान में सफवी शासनकाल की इमारतों में भी विभिन्न रूपों में शीशों का प्रयोग किया गया, जैसे चेहल सुतून और हश्त बहिश्त जैसी इमारतों में। काजारी काल में ये कला अपने चरम को पहुंच चुकी थी। उस काल के महलों, बड़े लोगों के घरों और पवित्र स्थलों में बहुत ही सुंदर ढंग से शीशे का प्रयोग किया गया है।
वर्तमान समय में जो इमारतें बनाई जा रही हैं, उनमें भी शीशे का प्रयोग किया जाता है। इस समय घर के भीतर और बाहर दोनों तरफ शीशे का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्राचीन काल में इसका प्रयोग सामान्यतः घरों के अंदरूनी भागों में किया जाता था।
ईरान में सलजोकी काल से इमारतों में टाइल्स का काम शुरू हुआ था। ये काम आगे भी जारी रहा, लेकिन तैमूरी और सफवी कालों में ये अपने चरम को पहुंच चुका था। इस्लामी काल में विभिन्न शैलियों में कलाकार इमारतों में टाइल्स का प्रयोग किया करते थे। उस काल में एक रंग या सात रंगों वाले टाइल्स भी प्रयोग किए जाने लगे थे। कुछ कलाकार टाइल्स और पत्थरों को एक साथ प्रयोग करने लगे थे। उस समय गुंबदों, मीनारों, दीवारों और मेहराब या धार्मिक स्थलों पर टाइल्स का प्रयोग किया जाता था।
इमारतों के सुंदर बनाने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता रहा है वो है रंग। 3 से 4 हज़ार साल ईसा पूर्व निवास स्थलों की सजावट, इमारतों और अन्य कामों के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता था। तख्ते जमशेद में रंग के प्रयोग को स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। आज भी ऐसी बहुत सी प्राचीन इमारतें मिल जाएंगी जिनकी साज सज्जा के लिए कई प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। विशेष बात यह है कि वर्तमान समय में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग न के बराबर होता है, अधिकतर औद्योगिक रंगों का ही प्रयोग होने लगा है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार सासानी काल के महलों में दीवारों पर पेंटिंग की जाती थी। इस प्रकार की पेंटिंग से महलों की भव्यता में वृद्धि हुई। बहुत से प्राचीन शिलालेखों से पता चलता है कि महलों की दीवारों पर लगी पेंटिंग में कई प्रकार के विषयों को दर्शाया गया है।